We are here for this deen. The more we are following the Sunnah of Rasulullah, the more you benefit from the gathering.
हमें कहा हर आदमी अल्लाह की रहमत का मोहताज है. अल्लाह बनी है वो जिसे चाहे उसे कहता है, जो मोहताज होता है खुदा उसे महरूम नहीं करता. इसलिए मेरे दोस्त को हमारा ये मौका होता है, इस मौके पर तो हमारा हर साथी, खास करके वो जो दीनदार साथी है, पुराने साथी है, उनको सुन्नत का एहतमाम करें ताकि उन्हें देखकर नया मजमा सुन्नत पर आ.
Allah is independent. We are dependent on the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah can give His mercy to whoever He wants. But those who are showing desire to come towards the deen, Allah will definitely give them the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why we are religious, we are here for the deen, we are here for the effort. We should be the first ones to set an example for those who are coming afterwards.
तो मेरे दोस्तों भाइयों, हमारा शास्त्रों में जमीन और आसमान, सूरज चांद सितारे, इस सब को अल्लाह ने बनाया है और हताला शास्त्रों ने इस इंसान को बनाया और तमाम कायनात में हताला शास्त्रों ने सबसे ज्यादा जो मकाम किया है वो इंसान को दिया. इसके पूरी कायनात जिसके कहते हैं दो सरमाए, एक है कायनाती सरमाया और एक है इंसानी सरमाया. कायना की सरमाए में सब निकाल गया, जमीन आसमान सितारे चांद सितारे दरिया पहाड़ जो कुछ. और जब से जमीन बनी है और जब से इंसान आबाद हुआ है, उस वक्त से कयामत तक जितने खजाने, जितना सोना, जितना चांदी, जितनी चीजें हैं, वो तमाम चीजों को कहा जाएगा कायना की सरमाए. और इंसान को अल्लाह ने बनाया है कि इंसान के बदन से निकलने वाले आमाल, हाथ को आमल करता है, जबान को आमल करता, जबान से बोल रहा है ये कामल है, हाथ का ये इस्तेमाल हो रहा है ये कामल है, आंख इस्तेमाल हो रही है ये कामल है, पांव इस्तेमाल हो रहा है ये कामल है. इसे कहा जाता है इंसानी सब. अब दुनिया का कोई नादान इंसान किसी बेकीमत की चीज को कीमती कह दे तो उससे बेकीमत चीज कीमती नहीं है. अगर कोई पागल गोबर को सोना कह दे तो उससे वो सोना बन नहीं था. कोई देहात का आदमी जो याद कर रही है वो किसी चीज को कीमती कह दे तो उससे वो चीज कीमती नहीं बन. इन दोनों सरमायों कायना और इंसान के मदद से निकलने वाले आप, इन दोनों सरमायों में कौन सा सरमाया कीमती, इसका भाव ज्यादा है, वो कौन जानता है उसको बनाने वाले का, वो पैदा करने वाले का. अंतारा शास्त्रों ने इस पूरी कायनात तक जो कीमत बनाई, ये पूरी कायनात बादशाह सोना चांदी सोनी जो कुछ इसके कीमत ये लगाई है. लौकार की दुनिया इन लंबा ही जना हो मां सबा मिनहा काफिर शुरू. ये पूरी कायनात और पूरी दुनिया की कीमत अगर अल्लाह के नजदीक एक मच्छर के पद के बराबर होती तो हक ताला शान दुनिया में किसी इनकार करने वाले को काफिर को एक घूंट पानी न देते. दूसरे हदीस के बाद में फरमाया कि जब से हम तला शाह ने इसको बनाया है, अल्लाह ने इज्जत की निगाह से कभी इसको देखा नहीं. ये वो पूरी दुनिया की कायनात का जो सरमाया जिसे कहा जाता है, इसकी कीमत अल्लाह के नजदीक की.
Whatever Allah subhanahu wa ta'ala has created around us, when it comes to the earth, the stars, the moon, the sun, all these things are created by Allah. And this human being is also the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. So these are the two things which Allah subhanahu wa ta'ala has created in this world, which are considered the two fundamentals of this existence of the universe. So one is the foundations of this universe, which are the stars, the moons, the earth, the planets, and everything surrounding it, the skies and the earth. This is one aspect of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, one of the fundamentals and the foundation of the creation of Allah. And the second part is the human being, this insan, this human being, and whatever actions that come out from this human being, the eyes, whatever it looks at, the seeing, the sight of the eyes is an action of this human being, is a creation of Allah. The feet, whatever they go towards, is a creation of Allah subhanahu wa ta'ala, is an action of this human being. Whatever actions come out from this human being is also part of this creation of Allah. Now these things which are part of the creation of Allah is something which is invaluable. If someone calls it valuable, that invaluable thing doesn't become valuable just by saying that it's valuable. So whatever Allah subhanahu wa ta'ala has created from the stars and the universe, everything that is within it, Allah subhanahu wa ta'ala has made this one of the foundations or fundamentals of this universe, of this creation. But what is the value that Allah subhanahu wa ta'ala has given this? So when you look into the hadith, the saying of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that if this dunya was equivalent to the wing of a mosquito, then Allah subhanahu wa ta'ala would not give a disbeliever a glass of water to drink. So this is the value in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala regarding this dunya. There's no value in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. It's also mentioned that since the time Allah subhanahu wa ta'ala created this universe, Allah has not looked at it with an eye of honor and respect. So this creation of Allah subhanahu wa ta'ala, this is one of the foundations of this universe. This is the value in the eyes of Allah. The value of this dunya is nothing in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. In another way, Allah subhanahu wa ta'ala has described the value of this dunya is that a disbeliever, when he leaves this world without iman, and he is standing in front of Allah and he sees the punishment in front of him, to protect himself from that adab and the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala, he will ask Allah, return me back into this dunya and give me the amount of wealth, gold, equivalent to the amount that will fill up between the skies and the earth and the skies, the space in between. And he would want to double that as well. He will ask Allah to double it so that he can give that in ransom to protect himself from the punishment of the Akhirah. But Allah subhanahu wa ta'ala will say, because there is no value of this dunya in the eyes of Allah, no matter how much he presents in front of Allah in ransom to protect himself from the punishment of Allah, even that will not be accepted by Allah.
इसके मुकाबले में हक्काला शाहों ने इस इंसान को जो आज़ाद किए ईमान अल्लाह ने किसी को अता फरमाए ये बहुत बड़ी नियामत है जमीन और आसमान में सबसे ज्यादा जो कीमती चीज है वो ईमान है ईमान अल्लाह की तरफ से मिलता है इसके हवाले में फरमाते हैं ईमान बाकी नहीं ईमान कसके नहीं किसको हिदायत किसको ईमान मिले वो अल्लाह के तरफ वो चाहे तो हम जहान के बेटे को ईमान दे और वो चाहे तो उम्मा अलैहिस्सलाम के बेटे को महरूम कर ईमान की दौलत किसी आदमी को मिली अब इस ईमान के बाद इस ईमान वाले का भाव और उसका वजन कितना कीमती है एक हदीस से बात करते जब अल्लाह के जलालों वालों ने पहाड़ों को बनाया तो फरिश्तों ने पूछा कि मारी ताकत थोड़े थोड़े हाँ इतने ताकत क्या आपको इससे ज्यादा कोई ताकतवर मखलूक बना ही नहीं, पहाड़ों से ज्यादा ताकतवर? फरमाया ना, लोहा इससे ज्यादा ताकतवर। फिर पूछा परिश्र जो पारी कर, क्या लोहे से ज्यादा कोई ताकतवर चीज आपने बनाई? फरमाया, लोहे से ज्यादा ताकतवर चीज आग है, मैंने आग बनाई। फिर फरिश्तों ने अपना सवाल किया कि आग से ज्यादा कोई ताकतवर चीज? फरमाया, हां मैंने पानी बनाया। पानी आग से ज्यादा ताकतवर चीज। फिर फरिश्तों ने पूछा वाली कि आपने हवा से ज्यादा कोई ताकतवर, पानी से ज्यादा कोई ताकतवर चीज बनाई? फरमाया, हवा में। अगला सवाल पूछो कि आपके बारे ज्यादा आपके अपने मखलूक में इससे ज्यादा कोई ताकतवर चीज है? फरमाया, ईमान वाले के दाहिने हाथ का सदका जो बाएं को पता न चले ये सबसे ज्यादा ताकतवर। ईमान, ईमान के साथ वहां इस कायनात को क्या कहा तो वो ये कहेगा कि पूरा सोने से भरपूर दवा दे दो, इसकी कोई ताकत। और ईमान वाले को ये कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि सदके से अपने आप को भूलो, ये नहीं कहा कि दो लाख का सदका दो, पांच मिलियन का सदका दो। इतना कुन्ना बीस में पढ़ना, इतना कुन्ना वलौ बिशिर्क के तमाम, जहन्नम से अपने आप को बचाओ चाहे खजूर का टूटा हुआ टुकड़ा हो, इस टुकड़े के अंदर कहना है वो इस्तेमाल रखी है और इस ईमान वाले के हाथ का वो छोटे से खजूर का सदका उसमें वो इस्तेमाल रखी है क्योंकि जहन्नम के आप को बजा दो। इंसान के बदल से निकलने वाला एक एक अमल कायनात की तमाम चीजों से ज्यादा।
On the other side, Allah subhanahu wa ta'ala said, in this human being has given him iman, a believer, with his body parts and his faith. How valuable and powerful that faith is and iman in this believer. That the greatest ni'mah and blessing that a person can be given in this dunya is iman. To describe the value of this, the hadith mentions that when Allah subhanahu wa ta'ala created the mountains, the angels, they asked Allah, is there anything more powerful, more stronger than these mountains? Because they looked at the mass and how great they are. So Allah subhanahu wa ta'ala said, yes, iron I have created which is more stronger and powerful than mountains. So the angels asked, is there anything more powerful than iron, more stronger than iron? So Allah subhanahu wa ta'ala replied, yes, fire is more stronger than iron. So then the angels asked, is there anything more stronger than fire? So Allah subhanahu wa ta'ala replied, yes, water is more stronger and powerful than fire. So the angels asked further, is there anything more powerful than water? Allah subhanahu wa ta'ala replied, yes, air is more powerful. They further asked, is there anything more powerful than wind? So then Allah subhanahu wa ta'ala mentions to the angels that yes, a believer who has a person who has iman and he spends a small amount in charity, his small amount of charity is more powerful than that. So everything in this creation, in this universe, a small amount of charity given by this believer in the path of Allah is more powerful and more stronger. It does not matter how much he gives. Allah did not say 100,000, 5 million, or so on. So on the other side, a disbeliever was ready to give double the amount of gold equivalent to the amount that is given in the dunya, double the amount he was ready to give in ransom to protect himself from the fire, but Allah did not accept that. It was not powerful enough because there's no value for it. But this believer, a small amount of charity given in sadaqah is enough to extinguish the fire of Jahannam. That's why the Hadith mentions in Taqunnah, we should pick them up, that save yourselves from the fire, even if it's by giving a small amount of bait in the path of Allah. So this is the power that Allah subhanahu wa ta'ala has given to the believer and his iman, and his small amount of charity. That small amount of charity is enough to extinguish the fire of Jahannam. This is the value of the believer and his iman. This is the value of the actions that come out from this believer also.
ताला शाह अहमद ने इंसान की को बहुत ऊंचा मकाम दिया और इस इंसान के लिए सबसे बड़ा कीमती सरमाया जो बनाया वो ईमान था कि ईमान के साथ उसके बदन से निकलने वाले आमाल का भाव बढ़ता गया और हर ताला शाह उसके ईमान की वजह से और इसके एक ही आमल पर अल्लाह ने जिला वालों को दुनिया और आखिरत के निजाम को इसके मुआफिक या इसके मुखालिफ कर इसलिए अल्लाह ने इन इंसानों की और दुनिया के सारे हालात का ताल्लुक मूल को माल से नहीं किया, दौलत से नहीं किया, टेक्नोलॉजी से नहीं किया। इसका ताल्लुक इंसान के बदन से निकलने वाले आमाल, इंसान के बदन से निकलने वाले आमाल सही है तो दुनिया में अमन है, वक्त पर बारिश आएगी, भाईचारा कायम है, बरकतें आएगी, मोहब्बतें कायम होंगी, सारी चीजें होंगी और दुनिया अमन और अमान का मजहब है। और इंसान के वजन से निकलने वाले अमान अगर सही नहीं तो फिर फसाद है। ताला शाह ने साफ फरमा दिया जहर फसाद अपने बड़े और बाहर का सब नहीं कि फसाद करीब में हो या खुशी में हो इंसानों के हाथों में तरबूत। इसलिए अल्लाह ने कामयाबी नाकामी और पूरी दुनिया के मसाइल को चीजों से अल्लाह ने नहीं जोड़ा, इंसान के बदल से निकलने वाले आमाल से जोड़ा है और इसकी मेन बुनियादी जो चीज है वो अल्लाह की तरफ से ईमान है। ईमान मिल गया बाकी के सारे आमाल अगर ये सही चलता रहा और ईमान मिला, ईमान पर मेहनत की और ईमान को बचा करके ले गया अपने कब्र में तो फिर ये आदमी के हमेशा के लिए नहीं होगा। लेकिन अगर ईमान नहीं और ये ईमान जिसे हिदायत कहा जाता है ये हिदायत का अल्लाह दिया जाबता है, उस जाबते पर अल्लाह हिदायत देते हैं। जैसे दुनिया में अल्लाह ने निजाम बनाया है वही अनाज लेना है जमीन पर मेहनत करो, कमाना है तिजारत पर मेहनत करो, चीजें ला लिए कारखाने पर मेहनत करो। जैसे दुनिया में अल्लाह ने ये चीजें बनाई है अस्बाब के दर्जे में सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, ऐसे अगर एक आदमी चाहता है कि मुझे दीन मिले, मुझे हिदायत मिले, मेरा ईमान मजबूत हो तो उसके लिए जाब्ता है। अल्लाह शाह उन्होंने दो चीजों को अपने जाब्ते में बनाया है, एक है वल्लज़ी ने क्या रीना लना दिया भजन को बोलना और दूसरी चीज है वैराजी की गई है मजबूरी, जो इनामत करेगा अल्लाह कहते हैं उसे हिदायत, जो मेरे रास्ते में मेरे लिए रीना का बदल दीन को दुनिया के लिए अगर कोई करता है अल्लाह फरमाते कोई भी आमल मेरे लिए इसे किया रीना तो फिर मैं उसके लिए हिदायत के राहों को खोल। मेरे दोस्तों और भाइयों सबसे बड़ी नियामत अल्लाह ने दुनिया में दीन को रखा है, दीन की मेहनत को रखा है, दीन की मेहनत किस वजह से तो उसके जरिए से दीन आया करता है ये अल्लाह ने दी है और ये हमारा बड़ा मजमा है जो खुशनसीब मजमा है कि जो ईमान और हिदायत और दीन की मेहनतों के साथ में सबसे पहला ये मजमा आया है। यहां ये मानना यह है कि आप आए नहीं, आप आए नहीं, अल्लाह आपको लाया है, अल्लाह ने आपका इंतखाब किया, अल्लाह ने आपका जैसे कि किसी के साथ तकरीर होती है तो सबसे पहले घर के लोगों को बुला दिया जाता है, घर वालों की तरफ से घर के लोगों को पहले बुला दिया जाता है। शादी की तकरीर है तो भाई अपने भाई को, भाई के बेटों को, बहन को, बहन के बेटों मेहमान के आने से पहले तो मर जाता है,
वो बुला दिया जाता है।
और काला शहर ने आप बोला कि श्रीमान अल्लाह आपको लाया है, अब यह है कि यहां लाया है कि अल्लाह की नियामत है, अब इस लाने के बाद में हमें आने वाले मेहमानों के साथ में कैसे रहना है, इस तरीके से रहना है, आने वाले मेहमानों की जान और माल हम सब के पास अमानत है और हमें यहां पर कैसे अपने को रखना है और आने वाले लोगों को किस जिम्मेदारी के साथ यहां पर रखना है, इसका मुकाबले के लिए हम थोड़ी देर के लिए यहां बैठे।
So this human being Allah subhanahu wa ta'ala has created and honored him. And the greatest honor that he was given was Iman. And this Iman, the value of this Iman, the importance of this Iman, is that it is connected with the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, with the conditions around him. In other words, his actions will have an impact, positively or negatively. In other words, the things that will have, the good things that will strike in the dunya are connected to his actions. If his actions are good, they are pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala, then the conditions that will strike on the earth will be good also. So if his actions are good and he has strong faith, then you will see Allah will spread barakah and blessings, relationship will be rectified, family will be rectified, things will be rectified around him due to his actions. But if his actions are wrong, and they are displeasing to Allah subhanahu wa ta'ala, then this will have a negative impact on the conditions around him. Then you will see corruption and fasad and fitna starting on the earth. And when Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that whatever fitna and fasad that spreads on the earth is due to the actions of this human being. So we realize from this that our action will have an impact. So that's why as believers we need to rectify our actions to rectify the conditions around us. So this is the value of this human being. This is the value of this believer that Allah subhanahu wa ta'ala has given him this opportunity. Opportunity for him to do good. And Allah subhanahu wa ta'ala has created a system in this dunya. Things to materialize in this dunya, there's a system. If a person wants to acquire wealth, he needs to work for it. If a person wants to acquire grain, he needs to farm. He needs to do some farming work. He needs to work on the land. Without this struggle, nothing comes into existence. We know this system. So similarly, when it comes to the believer, if he wants iman and faith and actions to exist in this dunya, then for that also Allah subhanahu wa ta'ala has created a system. There is also a method for that. There are two things that a person needs to do. In one place Allah subhanahu wa ta'ala mentions, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. What is to struggle for the deen of Allah? What is to struggle for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala for Allah's sake? And here Allah mentions for his sake. A person, if he is struggling for the deen of Allah for dunya, then he will not get the deen. Because that is not the system, that's not the method. So a person has to struggle for Allah subhanahu wa ta'ala with ikhlas and sincerity, then Allah will open up the doors for him for hidayah and for guidance. And the second thing is those who turn towards Allah, which is hidayah. A person turns towards Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will guide him also. So this is a system, this is a method through which a person can acquire hidayah and guidance. And this is what we need to strive for and struggle for. So we are here for this purpose, we are here today. We have gathered early for this ishtima, for this gathering. Alhamdulillah, Allah has blessed us, given us this blessing and mercy to come first and to sit here and start off this gathering in this manner. We should think to ourselves that we have not just come on our own. We have been selected by Allah subhanahu wa ta'ala. This is the mercy of Allah, the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala, that He has selected us for this purpose, that He has brought us first so that we can become the means of those who are coming after us. To make sure that they benefit extremely from this ishtima and from this gathering. So this is an honor that Allah has given us. We should realize that and respect that we have been selected by Allah. A person who is selected by Allah, then a person has to fulfill the responsibility of that selection as well. For that we need to gather our thoughts, and at the same time we need to stick together and realize what our role is and responsibilities are is that those individuals who are going to come afterwards, how should we take care of them? How should we make sure that every moment of theirs in this Krishna is spent in the best way, in the best way possible? For that we are gathered here, and we should follow the instructions how to take care of them.
पहली बात तो हमें दोस्तों ये है कि पहले ही हमारी समझ में आ जाए कि ये मजमा जो यहां आएगा और जो आ रहा है ये हमारी दावत पर है। हमारी जवानों ने, हमारे घर करने वालों ने, हमारे साथियों ने, हमारे कमजोर के मुलाकात करने वालों ने इन्हें दावत दी। हमारी इज्तिमा है हम दर्शन। तो घर का ये निजाम होता है कि किसी आदमी को अगर दावत देकर के बुलाया जाता है तो फिर कहना उसका इंतजाम होता है, उसको खुशादेव कहा जाता है। क्योंकि लाठी भी क्यों ना आया है, वो बहुत क्यों आ रहे हैं। यदि जंग को पता चला कि अब्बा ने इसे बुलाया फिर देवी दे यहां की जो मजमा आ रहा है वो हमने दावत दी। शराई और की तकाजा ये है कि दावत उसको दी जाए, उसको वेलकम कर। आप देखोगे कि आपके यहां पर गली में की कोई शादी की तकलीफ है, 500,000 आदमी को आपने मदद किया है तो घर में जो सबसे बड़ा होता है बाप है, दादा है, नाना है, जो बड़े होते हैं उनकी कुर्सी वहां बाहर होती है। आइए आइए तो आते ही आने वाला ये समझता है कि मैं परायों में नहीं आया, मैं अपनों में। मदीना मुनव्वरा में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वफ़ूद जो आते थे तो उसको सहाबा जहां पे ही देखते थे एकदम यही सबसे पहला था। आज में तो ये हो कि मैं अपनों में हूं, वहीं से यहां तहत की बात को बाद में सुने रहना किसी की समझ में आए कि किसी की समझ में नहीं आए, लेकिन हमारा बर्ताव हर एक की समझ में आए। अब एक रास्ता यह है कि आपको पता है कि कैम्ब्रिज वालों को यह बॉर्डर लगे हुए, कैम्ब्रिज वालों को यहां रखा है, गुलाम को यहां रखा है, गुलाम को यहां रखा है। अब इसके बाद की हमारी जमात है वो वहां खड़ी है और भाई कहां से आया कैम्ब्रिज। अच्छा देखो यहां से जाओ सीधे, वहां सामान है, वहां बोर्ड है, वहीं पर सामान रख दो, वहीं बैठे बुझेगा। एक तरीके ये और एक तरीका यह है कि आपके साथ जो नौजवान है इन नौजवानों में किसी बड़ी उम्र के आदमी का पैर उठा लिया अंदर से भी मेरे साथ चाचा मेरे साथ है, क्या कुछ फर्क है? बोलो बोलो आने वाले में आपको मोहब्बत से दिखा दिया जाए। नया आदमी आया है उसको कुछ पता नहीं है, आप पे गए एक आदमी वहां बैठ गया, वहां बैठ करके अब वो इसके बाद वाले तो वहां छोड़ गए, लेकिन यहां जितने बार की इख्तलात की जमाते उसमें एक शादी बैठ गई माशाल्लाह कैदी से आ गए। अच्छा आपके यहां तो लंबा सफर नहीं हो रहा, कैदी से आ गए। देखिए यहां इसलिए की जगह है, वहां उर्दू की जगह है, वहां कैदी भी है और नमाजों का अवकात ये है, बयानात का अवकात ये है, सारी बातें वो सारा समझ माशाल्लाह आराम से रहे। और हम लोगों की जमात यही है, कोई भी मसला आपको परेशानी या कोई भी काम हो हम आपके हाजिर हैं, हमें जरा बता दीजिएगा इंशाल्लाह हम आपको देखते हैं। ये वो पहला आमद है जो हमारे अंदर है, उससे उसे खींच लेना, उसके गिफ्ट की मौत है। मैं अपनों में दूसरी चीज मेरे दोस्तों यह है कि ये जो आदमी आ रहा है उसकी जान, उसका मान, उसका वक्त ये हमारे पास समान है। आपके यहां शादी में कोई आदमी आया और आपके घर में उसने किसी को लूट लिया उसको पैसे चोरी कर ले, बदनामी किसकी है? बोलो
ये
उर्दू नहीं समझते। यहाँ ज्ञान का और मान का तो कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह, लेकिन सबसे बड़ा मसला यह है कि मैं और आप हम सब आए हैं अपने घरों से अपना टिकट लेकर, लेकिन हमारे साथ हमारा नफ्स और शैतान बगैर टिकट के अंदर वो जो आएगा उसके साथ हमें शैतान देगा। अब हमारा काम यह है कि हमारे भाई से हमारा बर्ताव यह हो कि उसकी शैतान से हिफाजत हो जाए और जिस मकसद पर आया है उस मकसद को, इसके लिए सबसे पहली चीज यह है आने वाले ज्ञान और माल और उसका वक्त महदूद रहे, कम महदूद रहे, उसका महदूद रहने के लिए अमाल है मोहब्बत के साथ ध्यान रखा करने। ये भाई क्यों बैठ हो रहा है, दुनिया बोल रही बगैर गर्ज के अखलाक दुनिया में नहीं है, वो जानता है कि आपको उससे कोई डर नहीं, कोई डर नहीं कौन है दुनिया, लेकिन आप उसको भैया चाहिए भैया नहीं। ये एक हमारी जिम्मेदारी कि यहां आने वाले हर आदमी के साथ में हमारा खैर खाना बन मौलिक एक दूसरे का खैर था खैर खाना था और दूसरे के शॉर्ट मार के कह दूसरे के बड़ी कह दिया सारे चीज को ये हम इस इज्तिमा में अपनी कमाई के लिए आए कमाई के लिए कौन सी कमाई उनका मार्केट में जाते हैं कपड़े की मार्केट में तो आदमी कपड़ा लेकर आते बर्तन की मार्केट में बर्तन लेकर आता है, सोने की मार्केट में सोना लेकर आता है। हम यहां इस मार्केट में आए हैं हमारे हजरत मौलाना उमर साहब फरमाते थे आदमी कमाओ आदमी कमाओ, किसी से आपने अच्छा बर्ताव कर लिया उसके दिल में दीन की और दीन की मेहनत की मोहब्बत आई और उसे तय कर लिया कि आज से दीन का काम करना है, आदमी को आपने कमा लिया आपको पता भी नहीं है अभी मौत तक जिनके आमान कर रहा है वो सारे आपके पास है कमा लिया। ऐसा नौजवान बिल्कुल अरियल नौजवान है आप जैसे मोहब्बत के साथ बेटा बेटा वो आपसे मोहब्बत से ले रहे हैं और उसका दिन पसी है अभी ये नौजवान जीत की तरफ आ गया आपने कमा किस्सा सुना दो ये दावत की मेहनत जो है ये हाई वोल्टेज अपने बीमारियां को होना सड़क ना तो खेतों में गए जो मेन लाइन है इलेक्ट्रिक मॉडल बिहार और वो 400 करोड़ उससे आगे के तौर पर बार बार का ये होता है कि नीचे से मलक उठाओ जो भी झटके हमारे नीचे से फोन और बात होगा किसी ने कर लिया तो ठीक कर हाई पावर दावत की मेहनत हाई पावर मैं किसी पता हूं अब ना तो पता होगा कि किसी जमाने में ये हिप्पियों का दौर चल रहा है उन्होंने लोग जिसको जब वो गाँव कर लो सके मेरे पिछले मकों में चल रहे फिर रहे कटे हुए ऐसे हमारे मुल्कों में आते थे हिंदुस्तान पाकिस्तान और इनका अड्डा जो होता था वो चरस पाकिस्तान में एक राष्ट्राना लड़ता है क्रिकेट वही चरस कहते हैं वो तो लगी रहती थी इस तरह में लगा हुआ बैठा होगा वो फ्रांसिस ने किया इस तरह पाकिस्तान में तो भी किया होगा दो बच्चे पर हमें क्या सुनती पाकिस्तान वाले को उससे कहा मुसलमान हो जा जवान को पूरा टूटा होगा तो उसने कहा बना दे उसके कहा पढ़ता लेना पढ़ा दे जन ilaha illallah. Dengan Muhammad Rasulullah, sudah Muhammad Rasulullah. Sejak itu Musliman mulia. Sejak siap ini juga dia. Ini Fransisi ayat lah tapi mungkin. Zakarillah. Subah utah tu se sabku bhol gaya kisitna yaad rakhna ke sa Musliman. तो वो अपने होटल से नीचे निकला, सड़क पर आया, कोई साथ जा रहा है तो मुझसे पूछा, भाई साहब मैं रात को मुसलमान होने का हूं, मुझे क्या करना? इत्तेफाक से रोक के बदले दिया आदमी था, उसने हाथ पकड़ा और उस जमाने में आपकी मस्जिद की तरह थी वो वकील मुसलमान से ले गए और ले जाकर जमेदार साहब इस तरीके से आदमी मुझे मिला है और बीमा और फ्रांस में कहता है हमारी आजादी मतलब शुक्र है हर जवान जाने वाला है सामान ले तो नहीं आ गया किन्नी शुरू किए चिल्ला लगाया चार गर्मी लगाया बुजुर्गों से कहा कि हजरत मुझे पढ़ना है मशवरा हुआ वही पढ़ा हाफिज बन गया और मशवरा हमारे दोस्त के इस्तेमाल मोदी ने शुरू किया उन्होंने कहा मुझे बुरा दुख बताया तो मानो मुझे परास कर गया तो उन्होंने साहब से मेरी मुलाकात उनका नाम अब्दुल्ला रखा हुआ उन्होंने ये सारी काम कर उन्होंने खुद सुनाई और सुनाने के बाद मैं कहा कि अलहमदुल्ला मैं यहां पढ़ाता हूं और अब तक मेरे हाथों से 200 हाफिज बन जाते कितने बोलो 200 हाफिज हो गए और बाकी है जो चीज मैं आपसे एक सवाल करता हूं ये सारा सवाल कौन ले गया अच्छा उसको पता है कैसे वो तो जिस दिन कयामत के दिन ये सारे उनकी सिफारिश करें अच्छा ये है दावत ये है दावत किसी को खुशकब करके फुसला करके इकराम करके दीन की जैसा किसी नजर करा दीन की मोहब्बत करा दीन पर लगा अब ये हो गया अब वक्त नहीं है मैं ऐसे ऐसे किसी में आपको सुना था दुनिया में जरा आपका किसी के साथ में थोड़े जरा नंबर को इनका भेज अल्लाह ने सलाहियत दी लोग पता नहीं पैसे के लिए कितने क्या क्या पेशावर करते हैं क्या क्या मरते हैं जो पैसा बाकी रहने वाला है अल्लाह ने वो मेहनत दावत की हुई है जो अल्लाह अपने पसंदीदा और प्यारे नबियों को देता है अपनी दाद से मांगो खुदा हमने थे और ये इज्तिमा जो है इस इज्तिमा को मदीना मुनव्वरा का ये तीन दिन हमने मश्क कर कौन सी मदीना मुनव्वरा का जो माहौल था दीन सीखना सिखाना दीन की दावत देना दीन की बात कहना दीन की बात सुनना और आने वाले मुश्किल के साथ हर आदमी हमें के मदीना में क्या हर आदमी इस फिक्र में था तो मैं दूसरों को नंबर आज दुनिया परेशान आप लोग क्यों हैं हर आदमी जब बाहर घर से निकलता है तो वो समझता है कि मैं अकेला हूं और पूरी दुनिया मुझे लूटने के लिए तैयार है पूरी दुनिया चोर है मुझे कौन किसों को मैं मानते हैं इसके हर आदमी परेशान मदीना मुनव्वरा में क्या था उनका साथ एक आदमी दुनिया से चला गया तो 1000 की अगर बस्ती गलती है तो एक आदमी को दुनिया से चला गया तो 999 जो थे वो बच्चों के बच्चे समझते थे कि सब मेरे पास और 999 समझते थे कि मेरे पास का हाथ को एक दिमाग हो जाता था 999 उसके दिमागदार हो एक घर में फाका आता था तो अपने घरों में खुद फाके रखते हुए हमारे लिए मेहरबानी दया सुनना आने वाले मनुष्य के साथ हमने कहा हर आदमी का ये तय कर दिया कि मेरे जरिए से किस किसी को नफा, किसी को फायदा होता है। अब एक है दुनियावी फायदा, उसके भी बदलाएंगे, और एक है जिंदगी। इसके लिए मेरे भाई लोग बहुत असर से बात की है, ये हमारा अनुमान है। कुछ आमाल को इज्तमाही होंगे, कुछ आमाल को इज्तमाही होंगे। जैसे अब बयान के बाद में ज्यादा वक्त हमारे पास इंतजार है। अब अभी 3:30 बजे आप बारिश हो गए, ठीक है, असर के अंदर होने में बोलो
6:30
कितने घंटे,
3 घंटे,
ये फर्क। अब ये वक्त क्या है, ये अपनी कमाई का वक्त है। हमने कहा आज भी 2-4 दिन क्या है, क्या हो रहा है, ये अखबार साहब क्या, अब उसकी उसकी थोड़े से हालात करके वगैरह के लिए फिर टीवी बात बयान में हर आदमी ये समझता है कि मौलिका के बाद दूसरों को कह रहे मैं तो बना रहा, लेकिन इंतजार में इससे कुछ कह रहे हैं क्या, आपसे कुछ कह रहे हैं। आने वाला कोई आदमी ऐसा न बचेगा जिससे इंफरादी में हमारे किसी साथी ने बात ना, इंफरादी उसका जहन बनाया, क्या जहन बनाना है, वो दीन की जिस सतह पर है, वो दीन की जिस सतह पर है उससे आगे बढ़ने को लेकर जा सकता है, दीन की मेहनत की जिस सतह पर है उस सतह से आगे बढ़ने को लेकर। यह आने वाले पूरे मुख्य हमारी मेहनत है, और हमारा काम है दिन भर हम मेहनत करेंगे और रात को उठो और दुआए उम्मत के लिए। यह रोज होते हैं, घड़ी देर के सोते हैं, घड़ी देर के उठते हैं। यहां ये वक्त जो है ना, ये 24-48 घंटे खाना को बना दो, खाने में भाई दूसरों को आ गया और बात हम पर पहली लाइन में खड़े हुए, और जैसा कुछ नौजवान आ रहे हैं, कुछ लड़के आ रहे हैं, आप वहां कह रहे पेड़ क्या आ रहे हैं। ये कुछ चीजें जो लोग इस दुनिया में दीन जो इस्लाम कह रहे हैं वो तलवार से ही कह रहे हैं, अखलाक से कह रहे हैं। इसलिए एक तरफ ये हो, दूसरी तरफ तो उसके जहन में ये लोग मेरे हमदर्द हैं, मेरा भला चाहने वाले हैं, तो उससे दूसरा फिर अल्लाह के साथ ये मन पूरे आलम में नफरत आप वाली मेहनत को हमने छोड़ कर बड़े विनाश हुए हैं इस मेहनत पर हमें प्रबल के होता है। बस मेरे दोस्तों ये फिक्रों में अब आपको चाहे किसी जमात में जोड़ा हो या नहीं जोड़ा, आपको जमात आप अपने कमाई कर सकते के साथ हमें आने वाले मुद्दे से एहतियात करना है, आने वाले मुद्दे को नफा पहुंचाना है, और आने वाले मुद्दे से दीन की बात करके अपने आप पर बनानी है। ये हम जहन में लेके तलाश करेंगे
इंशाअल्लाह,
और करेंगे जितना जिसके वजह से मौजूद है उसे आने हमारा है, हम मेजबान हैं आने वाले, हम अनुसार बन जाए अल्लाह मुझे और आपको कॉफी करता है। ट्रांसलेशन
ट्रांसलेशन की जरूरत है, बड़ा सवाल जस्ट मेन थिंग इज मानव ऐसे नाउ वी हैव थ्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नंबर वन इज वी शुड रियलाइज दैट अमेरिकन आर कमिंग टुवर्ड्स इशिया, दे आर कमिंग बिकॉज ऑफ आवर इनविटेशन, वी कॉल देम। We went out, the Jonah went to meet the brothers, we invited them to the fish, and now we spread the word. Now we invited them to this place. When we have an invitation at home, when we invite people, we just stay inside the house and let them come. They knock on the door, and then you go and open the door. If we receive the people in that manner, we make arrangements that we know that when the people will be coming, we appoint someone outside. And generally, there is the senior or the elder person of the household. They go outside to receive the guests that are coming in. Right? So that those who are coming, the main purpose is that they do not feel that they are coming to a stranger's house. When you have someone outside receiving them, when you invite someone and you're outside and you say, Assalamu alaikum, ahlan wa salam, whatever, then we realize that we're coming into our own household. So this is very important that when the Rabbi is coming, our first responsibility is to realize that we have invited them, we have to take care of them, we have to cater for their needs. This is the first thing we need to realize, right? How do we see them? That's why when we go in the path of Allah, we make jamaat. What is the jamaat of the istiqlal? This is very important. How to receive the brothers who are coming into the masjid. And the second responsibility is the manner in which we receive them. So we appoint the brothers, those who are coming into the masjid of Krishna, who are going to come from now onwards. We should have people appointed at the entrances, so that those who are coming immediately, we say assalamu alaikum, we receive them, we ask them what to do, what not to do, we make all the arrangements for them. If we were to stand there and tell them, in Ishmael we appoint different locations for different areas and cities. So for example, we appoint an area for Cambridge or Gulf or these other areas. And the brothers who are coming, we ask them, where are you from? They say, we're from Cambridge. And we just give them instruction, you go this way, right, left, straight, and you will find the spinner, it will be written in Cambridge, and you can put all your belongings over there, and that's your place. And we let them go. How will they feel? They have to find their own way. That's one way. Do you think that they will be feeling that we haven't received properly? Or we haven't invited properly? They are left on their own, which means that they have to figure out things themselves. That's one way of receiving the madhima. Why is that you are there? You ask them, how are you? How was the journey? You talk to them, you cater to them, what are your needs? You appoint some of the brothers who are with you, take this, group of people, take them to their location. If there's any seniors amongst them, you hold their luggage, you help them out, you assist them. So in this manner, if you were to receive them, don't you feel and think to yourself that they are being welcomed properly? They will think themselves, mashallah, alhamdulillah, this is our place, this is our home. So receiving them is very important as well. And giving them proper instructions and assisting them with akhlaq, with care, is also our responsibility. This will go a long way. Many a time, many people who are coming to the Ishtima, some people are there for the first time. And that first impression is a lasting impression. If that first impression is good, then that will have a positive impact for the rest of the life. If that impression is not good, then sometimes that first impression will have a negative impact for the rest of the lives. So receiving them properly in the best manner possible, the way we receive others as well. You mentioned the example in Medina, the Prophet ﷺ, when the delegation would come into Medina. Sahaba and the Imam would go out and receive them from outside to bring them into the masjid. And this is how they used to receive the wukun and the delegation that would come into Medina. This is a way of, taking care of them and respecting them and honoring them in this manner. So giving them this reception is very important. And then the third thing also, part of our responsibility is to realize that this majma, whoever comes, is our trust. It's our amanah. What does that mean? That every individual who is coming to this ishtima, he is coming not just with his belongings, not just with his wealth. He is coming with two important things. One is his shaytan, and the second thing is us. He's coming with that also. So when he's coming to the majma, when he's coming to the ishtima, we have to realize that his shaitan and nafs are also with him. So the responsibility is, just as when we are given responsibility for a while, for example, if there is a wedding, and we have invited people to that wedding, and some individual comes and his wealth gets robbed, someone robs him, he loses his wealth, he loses his phone, someone takes it away, someone takes his wallet, then generally, what do we think? Who is responsible for that? The host, those who have invited them. Right? So, inshallah, these things will not happen in this majma. But the most important thing is the shaitan and us that have come with them. We have to realize that it's our responsibility to make sure that the shaitan and us that they have come with do not destroy their time while they are here. So, you have to realize how important it is for us to interact with them and to give them dhamma, to give them invitation, to sit down with them, to explain to them the importance of sitting in Ratna, sitting and listening to the important talks, to make sure that the shaitan and nuts do not destroy and waste their time at this Ratna, and this time that they have given for the Nishima. So that's our responsibility as well. Every individual should think, those especially who are here, that we should try our best to interact with every individual that is coming, individually sitting down with them and giving them dawah, giving them invitation, and with care. One is the Ratna or the Bayan that is taking place as a collective dawah that has been given by the speaker. People sit in that, people listen to that. And sometimes individuals think to themselves, we have not been given that attention. But if we were to sit with them individually and give them dawah, then this gives that individual more attention and he feels more welcome. And he is ready to receive that invitation more better. Right? So that's the importance of giving that dawah and importance. And then he also mentioned just summarize this as well, is that our work of dawah is very powerful. And he mentioned examples of electricity. The bulb that is connected to the electricity, if the connection is loose, then the power, you won't get that much power in that bulb. But if the connection is strong, then that bulb will give its full light and illuminate the whole area. So our work of dawah is very valuable, very effective, and very powerful. And then he gave an example of a story that our action will have an impact. And sometimes we cannot even realize this. We do something good, we receive someone in the best way possible, we may not realize how positively this has impacted that individual and he has changed his life. And sometimes our wrong action will have a negative impact and that will stay with that individual for a time. So he gave a story regarding that. And in Pakistan, there was a time where there was a lot of hippies and they used to have a club where they used to sit down and have drugs and so on. They used to get drunk. So they were once in that club, and this one Pakistani, who was also part of that club, and they were drunk. They were, not in their normal state, not conscious. And this one individual from France, he also ended up in that place and joined the club, and he also got drunk. He also started taking the drugs. So they were all in that state where they were unconscious, engaged in their drugs. So one Pakistani brother at that moment saw this person from France and he engaged in a conversation with him. And in that state where they didn't know what they were saying, right? So the Pakistani brother, he just started a conversation and he said, "Oh brother, accept Islam." Right? So he said, "What is Islam?" So they were just saying these words. And he said, "Just say La ilaha illallah." So he said, "La ilaha illallah. Say Muhammad Rasulullah." So he said, "Muhammad Rasulullah." And then he said, "Now you are a Muslim. Go look at a Muslim." Right? So in that drunken state, he just said these words. So after this Pakistani brother, he left. And the France brother, he left also. The brother from France, he went to his hotel. And then after he gained conscience, the overhang, he came out of his unconsciousness, he got his senses. Then he thought to himself, "Wait a minute, I'm a Muslim. Right? I heard something about Islam, I'm Muslim. I think I'm a Muslim." So then he went out of his hotel, and obviously this was in Pakistan, he met some brother, and that brother ended up to be a Tabligi brother. And he said to him, "I'm a Muslim, I'm from France, but I'm a Muslim. What should I do?" So mashallah, the brother realized that this person has accepted Islam, so he took him to the market, put him in the Amah, and slowly, his brother from France, he started to learn the religion. And someone was appointed to teach him. So he started to build his knowledge regarding Islam. Later on, he went back to France, and he continued his studies, he became a Hafiz of the Quran, he became a Alim of the world, and he started teaching. Mawlana Hussain and Mawlana Yunus, Marhum, who passed away, he went to France and he got this whole Karbazani regarding his brother who accepted Islam in Pakistan. He came back with this Karbazani that this individual who accepted Islam at that moment, he became a prophet and an alim and he started teaching, and 200 students completed the memorization of the Quran at his hands. Right, so he was asking the question, who gets all the reward? Right? The person who was drunk at that time, he was in his drugs, he didn't know what he was saying, but he just said these words. When he comes on the day of judgment, and these actions of this individual, whatever he did throughout his whole dunya, throughout his whole life, they will come to rescue him, he will remember. How did this happen? It will be told to him that after one day when you said this word, this person accepts the Islam and so on and so on. Right, so sometimes our action will have an impact. And that's why every moment of ours is valuable when we are in this Ishtima. We should try our best to receive the people in the best way possible. Through our actions, we can have a positive impact on the Ummah. And this is the responsibility of ours to make sure that every individual that comes in this Ishtima, they gain from this Ishtima and they transform their lives. They get hidayah, they get guidance, and they transform their lives. And that transformation will come when there will be care given to them. In Medina, every individual, if one individual fell sick, then the whole of Medina will feel the sickness of that individual. When someone was in some pain, everybody will feel that pain. When someone passed away from a family, everybody in that whole village or that town will feel the pain of the loss of that one family. So in this manner, we have instructed this is the care and responsibility and care that the Anbiya had for their nations. We should develop that care and concern for the people who are coming towards this Ishtima as well. So inshallah, if we will fulfill these three responsibilities, this time that we have, then inshallah, this Nadwa will be successful, and those who will be coming will benefit from this Ishtima as well, and we have the opportunity to become the means of guidance for them as well. Inshallah, accept. Inshallah, everybody is ready for this?
Inshallah. Inshallah. Inshallah.
वो नया आने वाला है जिंदगी में पहली बार उसको तीन दिन के लिए तैयार कर दो जिसके तीन दिन लग चुके हैं उसको चिल्ले के लिए तैयार कर दो और जिसको चिल्ले के लिए तैयार करो मैं लग गया उसको चार महीने के लिए तैयार करो करोगे आपको कौन तैयार करोगे मन तो आगे होना चाहिए मन तो आगे होना चाहिए ये मजमा अपनी जात से भी जो मुझे करना है और उम्मत को इसकी दावत है ठीक है भाई।